ओम शांति। आज की इस पट्टी की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। सभी को आवाज आ रहा है? भारत के इतिहास में एक बड़े दार्शनिक हुए हैं कभी, जिनका नाम था वाचस्पति मिश्रा। अद्वैत वेदांत पर उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। उनके जीवन में उल्लेख है कि जब वो युवा थे तो उनके मन में बहुत वैराग था संसार के प्रति, सांसारिक जीवन के प्रति। और उस युवा काल में वो गहन अध्ययन करते थे और उसी बीच उनके पिताजी ने उनसे कहा कि तुम्हारी शादी करनी है, परंतु वो अपने अध्ययन में, अपनी तपस्या में, अपनी साधना में इतने व्यस्त थे कि उन्हें ये पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। उन्होंने ऐसे ही कह दिया, हां ठीक है, और उनकी शादी कर दी गई। शादी हो गई। शादी होने के बाद वो ये भूल ही गए कि उनकी शादी हुई थी और उनका लक्ष्य था एक ग्रंथ का निर्माण करना। और यह भी लक्ष्य रखा था कि जैसे ही वो ग्रंथ निर्माण होगा वो इस संसार का त्याग कर देंगे, संन्यास ले लेंगे। तो शादी तो हो गई, परंतु जैसे कहा वो भूल ही गए कि उनकी शादी हुई, उनकी कोई पत्नी भी है। वो सुबह से लेकर रात अपने अध्ययन में लगे रहते और उनकी जो पत्नी थी भी ऐसी आत्मा थी कि जो अपने पति की पूरी सेवा करती थी, परंतु कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि उस घर में वो भी रहती है। उनके लिए भोजन दे देती थी और अलग हो जाती थी। जो कुछ उनको चाहिए साधना में सब कुछ किया उसने, परंतु ये व्यक्ति ऐसा था कि इसे पता ही नहीं कि उस घर में कोई दूसरा व्यक्ति भी रहता है। दिन रात अपनी किताब लिखना, और जैसे उन्होंने संकल्प किया था कि किताब जिस दिन पूरी हो जाएगी मैं इस संसार का त्याग कर दूंगा। तो एक अंतिम रात थी वो, 12 साल ये समय चला जबकि वो अपनी किताब लिखने में व्यस्त थे और उनको ये पता ही नहीं कि उस घर में एक स्त्री भी है। वो अंतिम रात थी जबकि सुबह उनकी किताब पूरी होने वाली थी और फिर सुबह सुबह वो निकलकर संसार छोड़कर जाने वाले थे। तो जब दिया बुझ गया था तो किसी ने आकर वो दिया जलाया, उनकी पत्नी ने, तब पहली बार उन्होंने देखा अपनी पत्नी का हाथ और उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं हे देवी। उसने कहा, स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं, पिछले 12 साल से यहां आपकी सेवा कर रही हूं। तो वो कहता है कि अच्छा 12 साल से, और मुझे तो पता ही नहीं कि तुम 12 साल से इसी भवन में रहती हो, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम मेरी पत्नी हो। तो वो कहती है कि जब से मैं आई हूं देख रही हूं आप इतनी तपस्या में मगन हैं कि मैं नहीं चाहती थी कि आपकी तपस्या भंग करूं, इसलिए मैंने भी अपने आप को छुपा के ही रखा। उसे बहुत आंसू आते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, मुझे मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी शादी कब हो गई। वो इतनी अपनी मगन लगन में मगन था अपनी अवस्था में। तो वो पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, आपने आज तो मुझे पहचान लिया, मैं खुश हूं। अब तक मैंने जो किया, आपने मुझे एक बार देख लिया, बस यही बहुत है। परंतु वो कहता है, मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूं, भोर होते ही मुझे तो निकल जाना है, मैं वापस नहीं आऊंगा। वो कहती है, आप जा सकते हैं। वाचस्पति मिश्रा निकल जाता है, संन्यास ले लेता है। और जो अभूतपूर्व ग्रंथ की उन्होंने रचना की, उसका नाम उन्होंने रखा था भ्रामती। भ्रामती स्कूल ऑफ वेदांत जिसे कहा जाता है। वास्तव में भ्रामती शब्द का उस वेदांत से कोई संबंध नहीं है, परंतु उसकी पत्नी का नाम भ्रामती था। उसकी याद में उन्होंने उस ग्रंथ का नाम भ्रामती रखा। यह सत्य घटना है इतिहास की, 12वीं या 13वीं शताब्दी की। क्यों हमने ये बात आज कही? कैसा त्याग होगा उसका, कैसी तपस्या होगी उसकी, विद्या वाचस्पति की नहीं, उसके पत्नी की, जो एक ही घर में रही, उसी के साथ रही, परंतु उसकी साधना को, उसकी तपस्या को भंग नहीं होने दिया। त्याग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ये। और भारतीय नारी इसी के लिए प्रसिद्ध भी है। तो आप सब लोग आज यहां आए, और हमारा लक्ष्य है तपस्या। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, बिना त्याग के भाग्य बन नहीं सकता। और ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के लिए त्याग की परिभाषा बहुत गहरी है। पहले बाबा ने देहभान की स्मृति का त्याग, इस पर मुरली चलाई। पिछले संडे कर्मेंद्रियों की आकर्षण, एक भी कर्मेंद्री की आकर्षण है तो संपूर्ण त्याग नहीं। एक एक कर्मेंद्रिय मकड़ी का जैसे जाल है, उसमें फंसती है, रूहानी बेहोशी हो जाती है और फिर चिल्लाती है, बेअर्थ की बातें करती है। और आज की मुरली में था देह सहित देह के सर्व संबंध। संसार में है, गृहस्थ में है, परिवार में है, परंतु बुद्धि लौकिक संबंधों से ऊपर उठ गई है। स्त्रीत्व और वो पुरुषत्व का भाव नहीं रहा। आत्मिक दृष्टि, सभी एक है, यह भाव कितनी श्रेष्ठ साधना है, कितनी श्रेष्ठ ये तपस्या है। जो उदाहरण दिया उसमें भ्रामती का त्याग प्रसिद्ध है संसार में। भ्रामती विद्या, परंतु जिस त्याग की बाबा बात कर रहे हैं वो उससे कई गुना श्रेष्ठ है। वहीं रहते हुए, उसी प्रपंच में, उसी संसार में, उसी लौकिक व्यवहार के उस जीवन में अलौकिकता ले आना, कितनी बड़ी साधना है, कैसी तपस्या की इसमें आवश्यकता है। तो हमें अपना जीवन इस संसार में रहते हुए भी कैसे बनाना है, कमल समान, कीचड़ में है परंतु स्पर्श की अवस्था है, अनटच्ड इंटैक्ट। संसार का कीचड़, संसार का मैल, संसार का कीचड़ा उसे स्पर्श नहीं करता, ऐसा पवित्र शुद्ध पावन जीवन, ये गृहस्थ जीवन का लक्ष्य है। एक तो वो लोग हैं कुमार और कुमारिया जो इसमें उतरे ही नहीं, वो ये साधना करे बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी एक मुरली में बाबा ने कहा था, जो कुमार और कुमारिया है वो वीर है, परंतु जो गृहस्थ व्यवहार में रह के पवित्रता का पालन करते हैं वो कौन है, महावीर। महावीर और महावीरनिया जो उसमें उतरे ही नहीं उनकी बात छोड़ो, परंतु इस संसार को देखकर सब कुछ जानकर और फिर इससे वैराग आ जाना, ये तपस्या है, ये साधना है। एक तरफ संसार की आत्माओं को देखो कैसी डूबी हुई है विकारों में, शरीर बूढ़ा हो जाता है, मुरलियों में आया है, परंतु विकार खींचते हैं, विकार जवान होते हैं, ये संसार की आत्माओं की हालत है। और यहां हम एक तरफ देखते हैं बाबा के असंख्य बच्चे जो संसार में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं और संपूर्ण पवित्रता का पालन करते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। संसार में कहा हुआ है कि समुद्र को पिया जा सकता है परंतु काम विकार को वश में नहीं किया जा सकता। पहाड़ अपनी जगह से उठकर समंदर में गिर सकता है परंतु विकारों को वश में करना असंभव है। शेर से लड़ा जा सकता है और उसे परास्त किया जा सकता है, अजगर को मारा जा सकता है, परंतु काम विकार से छूटना बचना असंभव है। ऐसा योगियों ने भी कहा, तपस्वियों ने भी कहा, और यहां पर भगवान ने आकर ऐसा ज्ञान दिया है, ऐसा प्रभाव प्रवाह उस ज्ञान का है कि आत्माओं ने तुरंत पवित्रता धारण कर ली। क्या ऐसा था इस ज्ञान में कि आत्माओं ने इतनी सहजता से वो पवित्रता धारण कर ली। ऐसी एक बात बाबा ने आकर कह दी, ऐसी बात जो आज तक इस संसार में किसी ने नहीं कही थी, ऐसी बात जो कि किसी शास्त्रों में भी लिखी नहीं है। वो बात थी भगवान ने आकर स्मरण दिलाया, स्मृति दिलाई कि तुम देवता थे। लिखी है किसी उपनिषद में ये बात, किसी वेद में, किसी शास्त्र में, संसार के किसी स्क्रिप्चर में, कहीं पर भी लिखी नहीं है। उसमें लिखा है कि देवता थे, पर ये नहीं लिखा है कि तुम ही देवता हो। कितनी क्रांतिकारी ये बात है कि भगवान ने आकर छोटी सी बात बता दी कि तुम पावन थे, तुम देवता थे, अब तुम्हें फिर बनना है। इतनी बात सुनी आत्माओं ने और अवचेतन मन में वो चली गई, चित्त में ने उसको धारण कर लिया और असंख्य आत्माओं ने अपना जीवन परिवर्तन कर दिया। कहां तो विकारों में डूबे हुए थे और कहां तो निकलकर बाहर आ गए। वो सुख तुच्छ है, क्योंकि अनुभव हो गया उस दूसरे सुख का जो इंद्रियों से परे है। एक है इंद्रिय सुख, एक है अतीन्द्रिय सुख, दो है। वास्तव में आत्मा की जो प्यास है वो सुख की है। इंद्रिय सुखों में भी क्यों डूबता है व्यक्ति? क्योंकि उसे सुख चाहिए, इसलिए तो जाता है। सारा संसार तो उसी के पीछे पागल है। क्यों? क्योंकि क्षणिक क्यों ना सही चाहिए, परंतु जैसे ही उसे पता चलता है कोई एक दूसरा सुख भी है जो कि स्वतः ही प्राप्त होता है बिना विकारों में किए जाते, विकारों में प्रवेश किए बगैर एक सुख प्राप्त किया जा सकता है, वो है अतीन्द्रिय सुख। तो बाबा ने ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान हमें दे दिया है जिससे जीवन परिवर्तन हो गया है, जिसमें जीवन में स्वतः ही पवित्रता को हमने धारण कर लिया है। एक दूसरी कहानी हम सुनाएंगे, उसके बाद मुख्य विषय की चर्चा करेंगे कि कौन सी वो धारणाएं जीवन में लाए कि जिससे जीवन संपूर्ण पवित्रता की ओर बढ़े। ये कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई, लिखी है बंगाली भाषा में, शोशीर कविता जिसका नाम है द लास्ट पोएम। इस कहानी में वर्णन है एक स्त्री का और एक युवक का। स्त्री जो है वो बहुत अमीर है, महलों में रहती है, युवक जो है वो गरीब है, परंतु दोनों का आपस में बहुत अधिक प्रेम है, बहुत अधिक प्रेम, और दोनों शादी करना चाहते हैं। दोनों मिलते हैं और सोचते हैं हमें शादी करनी है, परंतु वो जो स्त्री होती है, वो जो कुमारी, वो कहती है शादी तो मैं तुमसे करूंगी, परंतु एक शर्त है। वो शर्त ऐसी है कि शादी के बाद हम साथ नहीं रहेंगे, मेरा महल इस ओर होगा और आपके लिए मैं उस ओर, झील है उसके उस पार आपका महल होगा, हम मिलेंगे, परंतु कोई निमंत्रण देकर नहीं, अचानक आप वहां से आ रहे, मैं यहां से आ रही, ऐसे मिलेंगे। आप यहां से नौका विहार कर रहे, मैं उधर से नौका विहार कर रही हूं, और हम मिलेंगे। वो युवक कहता है ये कैसी शादी है, ये भी कोई शादी है कि शादी तो कर रहे पर हम साथ नहीं रहेंगे? वो कहती है हां शादी तो ऐसी ही है, और मुझे केवल तुमसे ही शादी करनी है, अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं कुंवारी रहूंगी तुम्हारी यादों में, पर शादी मैं तुमसे ही करूंगी, पर शर्त यह है कि शादी के बाद तुम उधर मैं इधर, बीच में झील। वो कहता है आखिर ऐसा क्यों? वो उसको कहती है जैसे ही दो आत्माएं, दो व्यक्ति समीप आते हैं, एक दूसरे को जानने लगते हैं और फिर उनके अवगुण भी दिखाई देने लगते हैं, संबंधों में जो फ्रेशनेस होनी चाहिए वो समाप्त हो जाता है, जो प्रेम होता है वो समाप्त हो जाता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा तुमसे जो प्रेम है वो कभी भी समाप्त हो जाए। वो आत्मिक प्रेम देह के तल पर आ जाता है, इसलिए तुम उधर मैं इधर और बीच में झील, कभी मिल गए तो ओम शांति। आमंत्रण देके नहीं मिलेंगे, कोई निमंत्रण नहीं, अचानक मिले तो मिले। अब तुम सोच लो, इस गृहस्थ जीवन में भी भले हम साथ में रहे, घर में रहे, एक साथ रहे, परंतु बीच में क्या चाहिए? एक झील। हर संबंध में डिटैचमेंट चाहिए तो ही वो संबंध अच्छा रहेगा, लंबा समय चलेगा। जैसे ही संबंधों में घनिष्ठता फैमिलियरिटी बढ़ेगी, वार्तालाप संवाद डिबेट आर्ग्यूमेंट सब चालू होगा, एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है वो भी कम होने लगता है। इसके लिए मनुष्य के हर संबंधों में क्या चाहिए? डिटैचमेंट। अगर दो व्यक्तियों के संबंध में ये झील नहीं डिटैचमेंट की, ये डिटैचमेंट नहीं, तो दोनों ही नीचे गिरते हैं, और मुख्य रूप से स्त्री और पुरुष, चाहे वो कोई भी संबंध हो, चाहे वो बहन भाई का ही क्यों ना संबंध हो, चाहे यहां रहने वाली बहनें और आने वाले स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, सबके बीच एक क्या चाहिए? डिटैचमेंट। इंग्लिश में कहावत है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जहां फैमिलियरिटी आ जाती है वहां घृणा का भी जन्म होता है। आज की मुरली में इसे ऐसा करना चाहिए, चाहिए कि चाह घृणा, स्वार्थ रॉयल रूप घृणा का, वो सारा चालू हो जाता है। याद करते हैं बाप को, सामने आ जाती है वो आत्मा। तो इस जीवन को कमल समान बनाने के लिए अस्पर्श की वह अवस्था, अस्पर्श वह स्थिति जिसमें संसार में रहे, इस विकारी वातावरण में, ऐसा संसार का विकारी वातावरण है, हवाओं में काम वासना है, जहां पर चारों ओर मीडिया, चारों ओर न्यूज़पेपर, टीवी, पोस्टर्स, मूवीज, विकारों के अतिरिक्त वहां कुछ भी भरा हुआ नहीं है। उपन्यास, मैगजीन, चित्र, पोस्टर्स, क्लिप्स, वीडियोस, ऐसे इस वातावरण में कोई पवित्रता का पालन करे, कैसी कैसी साधना की आवश्यकता है। भगवान मिल गया, वरदान भी मिल गया, परंतु इतना काफी नहीं है, साथ में चाहिए तपस्या, क्योंकि बिना तपस्या के ब्रह्मचर्य की साधना नहीं हो सकती। तो कुछ धारणाओं की हम बातें करेंगे इस जीवन को कमलवत बनाने के लिए। जो लिख सके वो लिख भी ले, और फिर उसके ऊपर गहन चिंतन भी करे और सेल्फ चेकिंग भी करे। ये भट्टी में केवल सुनना नहीं है, एक एक शब्द जो कानों पर पड़ रहा है, शब्द शब्द के बीच में जो अंतराल है, वाक्य वाक्य के बीच में जो इंटरवल है, उसमें सुनते सुनते स्वयं को चेक करना है, स्वयं के जीवन पर एक नजर डालनी है। ब्राह्मण जिस दिन बने और उस दिन से आज तक कैसा जीवन रहा, कहां कहां पवित्रता का खंडन हुआ, बाबा ने एक मुरली में कहा है, तुमको 63 जन्मों के पाप कर्म विनाश करने में उतना समय नहीं लगता जितना ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए पाप कर्मों को भस्म करने में लगता है। वो जो पाप कर्म हो गए थे वो अज्ञान में हो गए थे, अज्ञान में एक का एक गुना और ज्ञान में एक का 100 गुना, दोनों चीजें पाप और पुण्य। पुण्य भी अगर एक गुना किया तो 100 गुना फल मिलेगा, परंतु पाप भी यदि एक गुना किया तो भी फल 100 गुना मिलेगा। अव्यक्त मुरली है 71 की, यदि जो लिखना चाहे लिख ले, यदि इस देह को, यदि इस देह को संकल्प से और नजर से या नजर से भी टच किया तो महा 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 पाप है। यदि इस देह को संकल्प से या नजर से, हाथ से नहीं, हाथ से नहीं, संकल्प से और नजर से टच किया तो ये क्या है? पाप नहीं, महा नहीं, महा महा नहीं, महा महा महा, ये परिभाषा है पाप की। यदि पुण्य 100 गुना है तो पाप भी 100 गुना है। चेक करना है स्वयं को, तो ऐसी वो कौन सी धारणाएं हैं जिससे कि ये जीवन कमलवत बन जाए। सबसे पहली धारणा है संपूर्ण पवित्रता, अखंड ब्रह्मचर्य। सभी भाई जो बैठे हैं, यदि कोई कुमार है वो भी जो बैठे हैं, सभी अव्यक्त वाणी है बाबा की, 15 नवंबर 2003, 15 नवंबर 2003 ब्राह्मणों का निज धर्म है संपूर्ण पवित्रता। यदि कोई सोचता है कि ऐसे ही हो गया, थोड़ा ही हो गया, थोड़ा नहीं बहुत है। सुना, कान खोल के सुनो, दोनों ही कान खोल के सुनना, इन्वर्टेड कॉमा, अव्यक्त महावाक्य बाबा के। यदि थोड़ी भी अपवित्रता है तो जैसे सफेद कागज पर काला दाग है। ब्रह्मा बाप ने इतनी गालियां खाई क्यों? उसी मुरली में है। कईयों ने बाबा को आकर कहा, बाबा इस पवित्रता को हटा दो तो इस संस्था में हजारों लोग आ जाएंगे। तो बाबा का क्या उत्तर था? बाबा को राय दी गई थी कि यह जो ब्रह्मचर्य की धारणा है, पवित्रता की धारणा है, इसको थोड़ा ढीला कर दो तो आपकी संस्थाओं में जो विरोध हो रहा है वो सब रुक जाएगा। तो बाबा ने क्या कहा था? क्या कहा था? बाबा ने कहा था, मुझे भेड़ बकरियां नहीं चाहिए। कौन चाहिए? शेर और शेरनियां चाहिए, जो दहाड़ लगाए और विश्व की आत्माओं को जगाए। और दहाड़ लगाने का सामर्थ्य केवल और केवल पवित्रता में है। तो कमल समान जीवन, कमल माफिक जीवन, कमल मानिंद जीवन बनाने की संपूर्ण पहली धारणा जो है वो है संपूर्ण पवित्रता। आज यहां बैठे बैठे ही चेक करना है, क्या मेरे जीवन में संपूर्ण पवित्रता आई है, या अब भी संकल्प में या स्वप्न में या दृष्टि में पवित्रता का खंडन हो रहा है? क्या ये देह अब भी खींच रहा है? क्या ये दृष्टि अब भी देह का देह को देखने के लिए आतुर है, स्वयं स्वयं से बात करनी है। भगवान हमें संकल्प और स्वप्न की पवित्रता बता रहे हैं, कितनी ऊंची अवस्था है। इसलिए इस धारणा को मजबूत करना है। अगर ये नहीं और बाकी सब है तो कुछ भी नहीं, पवित्रता नहीं। अमृत वेला उठ रहे, मुरली क्लास जा रहे, दिन भर सेवा कर रहे, सारा धन लगा रहे, मधुबन में जा रहे, बाबा से मिल रहे, जीरो। यदि कोई विकार में जाता है और यहां आता है, बाप की उसके लिए आज्ञा है, साकार महावाक्य, एक साल के लिए अपना मुंह ना दिखाए। मधुबन के लिए बाबा ने कभी कहा है कि मधुबन एक समय शीश महल बन जाएगा। अगर कोई विकारी आत्मा मधुबन के द्वार पे खड़ी हो जाए और कहे कि मैं अपना शीश निकाल कर देती हूं, तो भी उसे अलाउड नहीं किया जाएगा, वो धर्मराज का रूप होगा। इसके लिए स्वयं स्वयं पर धर्मराज बनना है, स्वयं स्वयं के प्रति कठोर बनना है। इस बात के लिए स्वयं को ढीला नहीं छोड़ना है। कौन सी वो चीजें हैं, कौन सा वो मीडिया है, क्या है वो, क्या मोबाइल है या व्हाट्सएप है या क्या है जो पवित्रता का खंडन कर रहा है, जो जो खंडन जिस जिस वस्तु से हो रहा है या व्यक्ति से हो रहा है, उस व्यक्ति को ही हटा दो। यदि कोई व्यक्ति है तो एक झील का निर्माण करो उस व्यक्ति और हमारे बीच, क्योंकि ये धारणा यदि नहीं तो कुछ भी नहीं। फर्स्ट धारणा है संपूर्ण पवित्रता। तो आज से सभी इसको फिर से धारण तो कर रखी है, परंतु एक बार प्रतिज्ञा से नहीं होता है, रोज रोज प्रतिज्ञा की आवश्यकता है। और दो, एक स्वयं से प्रतिज्ञा, एक बाबा से प्रतिज्ञा। तो सभी इस धारणा को फिर से मजबूत करेंगे, करेंगे ऐसा पवित्र जीवन हो कि भगवान खुश हो जाए। कल की मुरली में प्रश्न था, भगवान किसकी तलाश करते हैं? ऐसी आत्माओं को ढूंढता है जो मीठे हैं, ऐसी आत्माओं को ढूंढता है जो फरमान बरदार है, वफादार है, आज्ञाकारी है, जिनमें पुराना स्वभाव संस्कार नहीं रहा, पुराने कितने भी विकार का जीवन हो परंतु अब नहीं। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। पहली धारणा। दूसरी, अमृत वेला। अमृत वेला अमृत की वर्षा होती है। शिव को भक्ति में आशुतोष कहते हैं। आशुतोष अर्थात तुरंत प्रसन्न होने वाला, जल्दी प्रसन्न होने वाला। आशुतोष की वरदानी वेला है अमृत वेला, जहां पर स्वयं भोलानाथ बैठा है और सर्व वरदान लुटाता है। यदि उस समय हमें नींद आ रही है, यदि उस समय हम सोए हुए हैं, यदि उस समय सुस्ती में है, यदि उस समय साधारण अवस्था है, तो कैसे उस अमृत को हम अपनी बुद्धि रूपी झोली में धारण कर सकेंगे? कौन से वो कारण है जिसके वजह से अमृत वेला ऐसा सुस्ती में साधारण रीति से गुजर जाता है? क्यों नहीं उस शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होता है? शायद सोने की विधि में कोई गलती है, शायद भोजन में कुछ गलती है, शायद संबंध संपर्क में कुछ गलती है, शायद सारे दिन भर किसी ना किसी श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, यदि सारे दिन भर श्रीमत का उल्लंघन किया तो दूसरे दिन माया बदला लेगी। भक्ति में कहानी है एक भक्त की, जो रोज सुबह 5 बजे उठकर भगवान की पूजा करता है रोज, और एक दिन ऐसा होता है कि उसकी आंख ही नहीं खुलती है, उठता है तो देखता है 6 बज गया, इतना रोता है, इतना रोता है, इतना रोता है, सारे दिन भर रोता है, हे प्रभु ऐसे मैंने क्या पाप कर दिया, क्यों तुमने मुझे सुबह नहीं उठाया, क्यों मेरी ये साधना भंग हो गई। सारे दिन भर एक भक्त, एक अनन्य भक्त। दूसरे दिन सुबह 4 बजे आवाज आती है, हे भक्त उठो। वो कहता है कौन है, क्या भगवान है? वो कहता है मैं भगवान नहीं, मैं माया हूं। तो वो कहता है तुम कैसे आ गई? तो वो माया कहती है क्योंकि कल रात को, कल सुबह मैंने तुम्हें सुला के रखा था और तुमने इतना भगवान से प्रार्थना की, अगर तुम्हारी प्रार्थना उसने सुन ली तो मेरा क्या होगा, इसके लिए मैं स्वयं ही तुम्हें आज उठाने आ गई हूं। तो इस जीवन के हर दिन की जो शुरुआत होती है वो अमृत वेले से होती है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है, अमृत वेले अपने जीवन रूपी गाड़ी को पटरी पर डाल दो। सारे दिन भर क्या क्या करना है और कहां कहां जाना है कब तक सोचोगे? सुबह सुबह पटरी पर डाल दो, वो अपने आप चलती रहेगी। एक दूसरी अव्यक्त मुरली है, बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य है, अमृत वेला स्वयं को परमात्म प्रेम से इतना भर दो कि सारे दिन भर किसी और का प्रेम तुम्हें अपनी ओर आकर्षित ना करे। इतना क्या कर दो स्वयं को, ईश्वरीय प्रेम से, ईश्वरीय नशे से, स्वमान से भर दो, फिर किसी और का प्रेम आकर्षित नहीं करेगा। जो आज की मुरली में कहा, सहारे दाता एक है, ये अटल निश्चय और विश्वास, विश्वास शब्द प्रयोग किया है आज की मुरली में बाबा ने बहुत समय के बाद। सर्व प्राप्तियां एक से, सर्व सहारा एक, फिर वो समस्या है, फिर वो उलझन जब आएगी तो फिर किसी अल्पकाल के विनाशी सहारे की ओर बुद्धि नहीं जाएगी और फिर कर्मों का हिसाब बनेगा, लेन देन होगी, स्पीकर तो बन जाएंगे परंतु स्पीड नहीं आएगी, सेंसिबल तो बन जाएंगे परंतु इसेंसफुल नहीं बन पाएंगे, नॉलेजफुल तो बन जाएंगे परंतु विघ्न विनाशक नहीं बनेंगे आज की अव्यक्तवादी। तो दूसरी धारणा है संपूर्ण अमृत वेला, वो भी कैसा हो, शक्तिशाली। उसकी तैयारी कब से चालू करनी है, रात से। रात को टीवी देखते देखते कौन सोता है वो हाथ खड़े करेंगे? कोई नहीं। पिछले एक मास से जिसका एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ वो हाथ खड़े करो, एक दिन भी नहीं। और बाकियों का, अच्छा पिछले 15 दिन में जिसका एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ वो हाथ खड़ेंगे, पिछले 1 हफ्ते में जिसका एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ वो हाथ खड़े करेंगे, जिसका आज सुबह ही अमृत वेला मिस हुआ वो हाथ खड़े करे, वो भी बहुत है। अमृत वेला वो समय है जबकि भगवान से मिलन हो रहा है। यदि हम सोए हैं तो क्या सारे दिन भर में कितना भी ज्ञान चिंतन करो, मुरली सुनो, सेवा करो, शक्ति भरेगी? मुंबई जैसे शहर होते हैं वहां पर सुबह सुबह पानी आता है, कोई कोई एरिया में 4 से 5। अगर कोई गृहिणी उस समय नहीं उठती और पानी नहीं भरती तो सारे दिन भर बकेट ले लेके जाना पड़ता है दूसरों के पास, पानी दे दो, सुख दे दो, शांति दे दो। यहां पर भी अगर अमृत वेला ही मिस हो रहा है तो फिर शक्ति दे दो, सुख दे दो, शांति दे दो। हमारे घर में बहुत विघ्न है, हमको मधुबन से सकाश भेजो, ऐसा कहते हैं। हम राजा बनने वाले हैं, भिखारी नहीं। भीख मांगने के संस्कार क्यों है हम में? क्यों चाहिए किसी का प्यार, किसी की रहम, किसी की सहानुभूति, किसी का सहारा, किसी से प्राप्ति, किसी से अपेक्षाओं की पूर्ति की कामना? सर्व संबंध एक से। भक्ति में वो मीरा का उदाहरण दिया है बाबा ने आज, उसे केवल साक्षात्कार नहीं, साक्षात अनुभव हुए। और तुम हो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य, तुम हो डायरेक्ट ज्ञान सागर के ज्ञान स्वरूप बच्चे। क्या तुमको अनुभव नहीं हो सकता है? तो दूसरी धारणा है अमृत वेला, तीसरी धारणा अब मुरली। एक साकार मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है रोज सुबह मुरली क्लास में जाना, मुरली सुनना और आ जाना, यह है पुरानी चाल। क्या है ये? पुरानी चाल है बहुत, अब नई चाल अपनानी होगी। केवल मुरली सुन लिया या थोड़ा कुछ नोट कर लिया, इससे काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? अध्ययन, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय। शास्त्रों में तीन बातें लिखी हुई है, एक है श्रवण, दूसरा है मनन और तीसरा है निदिध्यासन। श्रवण अर्थात सुनना, दूसरा है उसके ऊपर मनन करना। जो भी हमने नोट किया है डायरी में, केवल ये नहीं कि ये मुरली बहुत अच्छी थी, बहन जी ने बहुत अच्छी मुरली सुनाई, यहां तक नहीं, क्या सुनाया, क्या था उसमें, कौन सा अर्थ था, कौन सा वाक्यार्थ क्या था, गुणार्थ क्या था, शब्दार्थ क्या था, भावार्थ क्या था। चार चीजें हैं, शब्द का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ, शब्दार्थ। दूसरा है वाक्यार्थ, जो बाबा ने वाक्य उच्चारण किए उसका क्या अर्थ है, उसका भावार्थ क्या है, गुणार्थ क्या है, गूढ़ अर्थ, गोपनीय अर्थ है उसमें कुछ। भगवान जो भी कह रहा है साधारण नहीं है, बहुत गहन है। तो मुरली का क्या करना है? स्टडी करना है, जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम की स्टडी करता है, जैसे कोई स्टूडेंट थीसिस करता है, पीएचडी की स्टडी करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी करता है, मुरली भी हमारे लिए ऐसा ही एक ग्रंथ है। और एक ग्रंथ के लिए एक एक मुरली एक ग्रंथ है। हमारे पास 24 घंटे का समय है, उसकी एक एक लाइन पढ़ना नहीं है, पीना है। पिबत राम रस, क्या करना है? उस लाइन को पी लेना है। उसका एक एक वाक्य कितना सुंदर है। भागवत में गोपिया श्री कृष्ण से कहती है, गोपिका गीतम में, तव कथामृतम, हे कृष्ण तव कथामृतम तप्त जीवनम, तेरी जो कथा है, तेरी जो वाणी है वो अमृत के समान है, और हमारा जो जीवन है तप रहा है, विकारों की अग्नि में हम जल रहे हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिर्डितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाददम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। ऐसी तेरी वाणी है कि जो कवियों ने जिसका गायन किया है, श्रवण मंगलम, केवल सुनने मात्र से ही श्रवण मंगल हो जाता है, ऐसी तेरी मंगलकारी वाणी। जिनके श्रवण समुद्र समाना, हे राम तेरी कथा सुनने के लिए जिनके कान समुद्र के समान विशाल है, वो आत्माएं धन्य है, ऐसी ये मुरली है। क्या उसका वैसा ही अध्ययन किया है कि बस मुरली आई, महावाक्य लिखे, प्रश्न लिखा, लिखने के बाद बंद, फिर सुना और फिर और खोला, फिर धारणा के लिए मुख्य सार लिखा, वरदान लिखा, स्लोगन लिखा और काम पूरा हुआ आज का, अभी चलो दूसरे कारोबार। एक ये भी कारोबार है, ये भी काम पूरा। हमने देखा कई कई सेंटर में माताएं अपनी डायरी भी वहीं छोड़ के जाती है सेंटर पर टेबल के, फिर दूसरे दिन ही खोलते हैं सीधा। पिछले सीजन की जो मुरलियां चली थी उसमें एक बाबा के महावाक्य थे, बाप तुम्हें ऐसे पढ़ाते हैं कि ये पढ़ाई जैसे छपाई हो जाती है। सुना होगा सबने, क्या हो रही है कि नहीं, कि संसार की बातें ही इतनी भरी हुई है कि भगवान की बातें कहां से उसमें समाएगी। वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, परंतु एक पात्र है, एक कंटेनर रखा है, उसमें पानी नहीं भर रहा है। क्या कारण है? तीन मुख्य कारण है। पात्र रखा हुआ है, बर्तन रखा हुआ है, वर्षा हो रही है, बरसात हो रही है, परंतु फिर भी कुछ भर नहीं रहा है। क्या कारण हो सकता है? पहला उसमें छेद है करके, इतना पानी तो आ रहा है परंतु सारा बह जा रहा है। एक दूसरा उल्टा रखा है, कहां से भरेगा। तीसरा पहले से ही गंदगी से भरा हुआ है, तो वो स्वाति की बूंदे कैसे उसमें समाएगी। यदि हमारी बुद्धि का बर्तन बहुत सारे छेद है उसमें, विकार के, व्यर्थ के, निगेटिव के, तो सारा ज्ञान बहा जाएगा। गॉसिप्स, झरमोई जगमोई की बातें, इसके घर में क्या हुआ, उसकी घर में क्या हुआ, इसकी ननद ने क्या किया और उसकी बहू ने क्या किया, क्या करना है तुम्हें? क्या इसलिए यहां आए थे? क्या ब्राह्मण हम व्यर्थ की बातें करने के लिए बने थे? यदि पात्र में छेद है तो कभी भी वो बारिश का पानी उसमें नहीं भरेगा। यदि उल्टा ही रखा हुआ है तो भी नहीं भरेगा। हर चीज में अपनी मनमत। भगवान ये कह रहा है परंतु अपने रीति से स्वीकार कर रहे हैं उसे। सुविधाजनक श्रीमत, फिलॉसॉफी ऑफ कन्वीनियंस उसे कहा जाता है। सुविधाजनक श्रीमत, अपने रीति से मोल्ड करके एडजस्ट करना कि बाबा ने ऐसा भी कहा है। बहुत सारे डायरेक्शंस है जो डायरेक्ट है, उसमें नो मॉडिफिकेशंस। यदि पहले ही बुद्धि में इतना किचड़ा भर रखा है, संसार की बातें, संसार की न्यूज, संसार में क्या हो रहा है, तो कैसे उसमें बाबा ने कहा है ये ज्ञान के लिए क्या चाहिए, कौन सा बर्तन चाहिए। शेरनी का दूध है ये, सोने का बर्तन चाहिए। क्या ये बुद्धि सोने का बर्तन बनी है? तो तीसरी धारणा है मुरली। चौथी धारणा भोजन। माताओं में से कितनी ऐसी माता है जो रोज 24 घंटे में एक बार भोग लगाती है, वो हाथ खड़ा करो। बहुत सारी। और बाकी क्या भगवान को भूखा रख के खुद खाते हो रोज? भगवान तुम्हारे भोजन का नहीं, भाव का भूखा है वास्तव में। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रयश्यति। हे अर्जुन, यदि कोई मुझे पत्र दे, पुष्प दे और फल भी दे दे तो मैं अनन्य भाव से उसे स्वीकार करता हूं। उसको भोग लगाना अर्थात अपने प्रेम को व्यक्त करना है। परमात्म प्रेम की अभिव्यक्ति है ये। जो हम खाए, गीता में लिखा है, जो बिना भोग लगाए अर्पण किए खुद खाता है वह चोर है। तो जो भी हम घर में बनाए सबसे पहले उसको दे। तो जो नहीं लगाते हैं वो आज से लगाएंगे सभी माताएं। अच्छा, जो भाई भोजन खुद बनाते हैं पहले तो वो हाथ खड़े करो, जो खुद भोजन बनाते हैं। बहुत है, कम है। भोग लगाते हैं सभी? लगाते हैं। जो भाई भोजन नहीं बनाते वो कितने हैं जो भोग लगाते हैं? जो भोजन नहीं बनाते कैसे भोग लगाते हैं? थाली में। जैसे कहा, भगवान भोजन का नहीं, भाव का भूखा है। जो भी हम स्वीकार करें, सबसे पहले उसको अर्पण करना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो फल भी हो सकता है, फूल भी हो सकता है, पत्ता भी हो सकता है, कुछ भी। इतनी जल्दबाजी ना हो तो। और चौका कहा जाता है हिंदी में, चौका सुना है ना, रसोई। चार बातें होनी चाहिए, पैसा कैसा आ रहा है उसका प्रभाव पड़ेगा भोजन पर। यदि किसी का शोषण करके वो पैसा आ रहा है, किसी को दुख देकर पैसा आ रहा है, दो नंबर से आ रहा है, तो वो पैसा कभी भी शक्ति नहीं बनेगा। दूसरा, जाति दोष। उस भोजन में यदि जिसको हम कहते हैं तीन प्रकार के का अन्न होता है, राजसिक, तामसिक और सात्विक, यदि वो तामसिक है, बासी चीजें हैं, या फिर प्याज लहसुन और नॉनवेज मांसाहार है, वो सब तामसिक है। राजसिक अर्थात जिसमें बहुत ज्यादा मिर्च है और बहुत ज्यादा मसाले हैं, ऐसी सारी जो चीजें और बहुत ज्यादा तेल से भरे हैं, जो कि उत्तेजना को उत्पन्न करते हैं, वो राजसिक है। सात्विक अर्थात फल जिसमें है, दूध जिसमें है, या बाकी जो हम भोजन बनाते हैं घर में वो सारा। तो भोजन के भी दोष। एक दूसरा, तीसरा है बनाने वाले के मन की स्थिति। किन संकल्पों के साथ भोजन बना रहे हैं हम? यदि मन में द्वेष है, मन में विकार है, मन में व्यर्थ है, तो वो सारे वाइब्रेशंस उस भोजन में जा रहे हैं। और चौथा, जो खाना खा रहा है वो किस अवस्था में भोजन को खा रहा है? क्या कंप्लेंट के साथ कर रहा है, इसमें ये कम है, उसमें वो कम है? किस अवस्था में भोजन स्वीकार करे? धन्यवाद के भाव के साथ। सबसे पहले तो शिव बाबा को धन्यवाद। संसार की आत्माओं को देखो, कितने भूखे हैं, कितने प्यासे हैं, अन्न नहीं मिल रहा है उनको, ऐसी आत्माएं हैं संसार में। एक सुंदर अभ्यास है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करना, कि एक एक निवाला जो मेरे मुख में जा रहा है, इस संसार की हर आत्मा तक पहुंच रहा है। यह भी एक संकल्प है। तो भोजन और जो भोग नहीं लगाते, वो आज से या कल से भोग लगाना आरंभ करे। और कितना देर भोग लगाना चाहिए, यह भी एक प्रश्न है। 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कितना? तो सभी 1 मिनट के, 3 मिनट के लिए अलर्ट होके बैठेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल होगा। इस ट्रैफिक कंट्रोल में हमें क्या करना है? बाबा के पास सूक्ष्म वतन में जाना है, और जो अब तक सुनाई हुई चार धारणाएं हैं, संपूर्ण पवित्रता, मुरली का अध्ययन, तीन धारणाएं भोजन, इसका वरदान बाबा से लेकर नीचे आना है। पांचवी बात, वैराग। वैराग चित्त की वह अवस्था है जिसमें राग ना हो। जन जन से राग का अभ्यास इतना ज्यादा हो गया है कि आत्मा उससे मुक्त नहीं हो पाती। आज मुरली में भी कहा है, लौकिक से तो छूट गए, परंतु अलौकिक में सारा कुछ फिर से स्थापन हो जाता है। व्यक्तियों में मोह, वस्तुओं में मोह, जन। मोह सकल व्याधिन कर मूला, इस संसार के सारी व्याधियों का मूल कारण मोह बताया है। ऐसी कोई ब्राह्मण आत्माएं नहीं है जिसने ये सारी बातें नहीं सुनी है। नष्टो मोह होना है, मोह जीत राजा बनना है, परंतु कहीं ना कहीं व्यक्तियों से और वस्तुओं में इतना गहरा मोह है कि उससे आत्मा छूट नहीं पाती। वैराग की एक बहुत सुंदर परिभाषा हमने कहीं सुनी थी, केवल दो शब्दों की परिभाषा है, वैराग अर्थात संसार असार और देह मिट्टी, ये दो ही खींचते हैं। इस देह को मिट्टी समझना और इस संसार को असार समझना अर्थात वैराग। इस संसार के पीछे भाग रहे, कैसी दौड़ है ये, और हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। विदेश में एक बहुत सुंदर किताब लिखी गई है, एलिस इन वंडरलैंड। छोटी सी एक कन्या होती है, खेलती रहती है और अचानक एक खरगोश के मांद में चली जाती है और एक स्वप्न लोक पे पहुंच जाती है एलिस। और वहां जाने के बाद उसको सब कुछ विचित्र विचित्र दिखाई देने लगता है, और सुबह से वो आई हुई होते हैं, दोपहर हो जाती है और दिखाया है उसमें दृश्य में कि वो भाग रही है क्योंकि उसे भूख लगी है, उसे प्यास लगी है। और सामने एक दरख्त, एक वृक्ष के पास एक रानी खड़ी है जिसके हाथों में थाल है मिठाइयों के, भोजन के। एलिस उस रानी की तरफ भाग रही है, इतनी जोर से भाग रही है। सुबह से भागना चालू किया है, दोपहर ही हो गई, थक गई, परंतु देखती है वो वहीं की वहीं खड़ी है। इतना भागने के बाद भी वो जो अंतर है रानी का और उसका उतना ही है। दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, वो जोर से चिल्लाती है, रानी ये कैसी दुनिया है तेरी कि यहां तो मैं कब से भाग रही हूं और वहीं हूं। वो रानी कहती है ये दुनिया भी तेरी दुनिया जैसी है, यहां कभी कोई कहीं नहीं पहुंचा है, यहां पर कहीं पर भी कोई नहीं पहुंचा है, सब केवल भाग रहे हैं। क्या चाहिए वो नहीं पता, धन संपत्ति मकान बंगला गाड़ी, और यदि मिल भी जाए कुछ जो चीज चाहिए वो यदि मिल भी जाए तो तुरंत व्यर्थ हो जाती है, अब वो दूसरा चाहिए। जब साइकिल थी तो लगा कि टू व्हीलर आनी चाहिए, टू व्हीलर आ गई तो लगा कि अब टू व्हीलर से क्या काम होता है, फोर व्हीलर चाहिए। फोर व्हीलर आई तो देखा कि बाजू वाले के का जो मॉडल है वो इससे बहुत अच्छा है। जैसे ही दूसरी की कार देखी, अपनी कार बैलगाड़ी की तरह लगने लगी है, अब वो चाहिए। इच्छाएं जो है वो समुद्र की लहरों की तरह है, कभी नहीं रुकती। बौद्ध धर्म में इच्छाओं के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, इच्छाएं महात्मा बुद्ध ने कहीं कहा है दुष्पूर है, दुष्पूर अर्थात कभी भी भरने न वाली। कितना भी कोशिश करो, सारा जीवन लगा दो, फिर भी आत्मा अतृप्त होकर ही मरती है। वासनाओं का स्वभाव ही अतृप्ति है। कितना भी भरो, कितना भी भोगो, परंतु आत्मा खाली की खाली रहती है। यही उसकी फितरत है, यही उसका स्वभाव है। इसलिए इस संसार को जानो क्या है और इस संसार से वैराग। ब्राह्मणों ने यह बात तो कब से सुन रखी है, इस संसार का विनाश होने वाला है। ये बात इतनी कॉमन प्लेस हो गई है कि यहां से सुनी और यहां से गई, हर मुरली में आ जाता है, विनाश सामने खड़ा है, विनाश गारंटी है, मौत का बाजार गर्म होगा, इस आंखों से जो कुछ देखते हो आंखों सहित कुछ भी नहीं बचेगा, सब सुना है, परंतु इसका असर ही होना कम हो गया है। सुन के सुन हो गया है बहुत बार, दिमाग जो है सुन हो गया है। वैराग के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक है गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। इस संसार को देखो, जन्म में कितना दुख है, मृत्यु में कितना दुख है, जरा और व्याधि बुढ़ापा देखो, वो बूढ़े लोगों को, वो बूढ़े व्यक्तियों को, जाओ उस वृद्धाश्रम में और उनकी करुण गाथा सुनो। उसी शहर में रहते हैं, बेटा भी उसी शहर में है, फिर भी वृद्धाश्रम में है, यही जीवन का सत्य है। और कहां हम फंसे हैं, मोह में, बंधनों में। कहां है देह का सौंदर्य, जाओ जाकर देखो अस्पतालों में, वो गरीब मरीज जनरल वार्ड में जहां पड़े हुए हैं व्याधि। वेयर इज द ब्यूटी। इस देह के पीछे लोग पागल हैं। कौन सा सौंदर्य है उस देह में। जाओ जाकर देखो उन कैंसर के पेशेंट्स को, उन एड्स के पेशेंट्स को, उन डायलिसिस के पेशेंट्स को, उन टीबी के मरीजों को, क्या हाल है उनका। तब वैराग जागेगा। हम जो शमशान घाट बनाते हैं वो गांव के बाहर बनाते, वास्तव में होना चाहिए बीच में। किस लिए? याद दिलाने के लिए कि ये है निष्पत्ति अंतिम। इतना जो भाग रहे हो ये सारी आपाधापी यहीं पहुंचने के लिए है। महात्मा बुद्ध के पास जब भी कोई शिष्य आता था संन्यास धारण करने, वो कहते थे जाओ पहले शमशान घाट में 3 मास, एक ही काम करना है, सुबह से लेकर रात तक चिताओं को जलते हुए देखो, आग की लपटे, सुबह से लेकर रात तक। कैसे बचा पाओगे स्वयं को वैराग से? हर व्यक्ति मोह के दलदल में ऐसा फंसा है, ऐसा फंसा है। और जिनसे मोह है वो इतने दुख भी देते हैं फिर भी नहीं छोड़ना चाहते उनको। सबसे ज्यादा दुख का कारण भी वही व्यक्ति है, परंतु मोह फिर भी है। कैसी विडंबना है। जन्म का दर्शन, मृत्यु का दर्शन। कितना भी कुछ भी हो, मृत्यु के साथ सब समाप्त। कहां गए वो मोबाइल फोन? कुछ नहीं बचा। जन्म का चिंतन, मृत्यु का चिंतन, व्याधि का चिंतन और बुढ़ापे का चिंतन, चारों ही चिंतन। इनमें दुख दोष दृष्टि देखना तो वैराग उत्पन्न होगा। इस संसार के प्रति इस प्रकार से दोष दृष्टि, नहीं तो इस संसार ऐसा पकड़ के रखा हुआ है हर एक को, कैसे छूटेंगे उससे। और इतने मोह, इतने प्रलोभन, नए नए आकर्षण हर दिन। इससे छूट जाए उसके लिए वो जो है, क्या है इस देह में, मल मूत्र मांस मज्जा के अतिरिक्त कुछ है क्या? बकेट, स्टूल और यूरिन की बकेट है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है इसमें। फिर भी इसी के पीछे लोग दीवाने हैं और पागल है। सारी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हुई है इसी भ्रामक, इसी भ्रांति पर, और इसी को व्यवसाय, व्यापार बना रखा है। और हम भी उसी में फंसे हैं, और हम ही उसी दलदल में हैं। क्या ऐसे अनित्य असुखम लोकम, गीता में लिखा है अनित्यम असुखम लोकम, हे अर्जुन ऐसे अनित्य असुखम लोक को पाकर मन मनाभव मध्याजी भक्ता माम नमस्करु, मेरी शरण में आ, अहम त्वाम सर्व पापोभ्यो मोक्ष इच्छामी मा सुच, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा, मेरी शरण में आ, सब कुछ छोड़कर, सारे धर्म को छोड़कर। भगवान अभी कह रहा है मैं आया हूं संसार में एक नई दुनिया की, एक नई सृष्टि की स्थापना करने। ये संसार जड़जड़ीभूत है, विकारी है, सड़ा हुआ है, जर्जर हो रहा है यह संसार। स्वयं को वैराग में स्थित करना है, क्योंकि समय हो रहा है। तो इतनी ही धारणाओं के को कहकर हम इस क्लास को पूरा करते हैं। तो सबसे पहली धारणा बताई, संपूर्ण पवित्रता। दूसरी धारणा बताई, अमृत वेला शक्तिशाली। केवल उठ के बैठ जाना अमृत वेला नहीं है, उसमें अनुभव हो, परमात्मा प्रेम का अनुभव, 5 स्वरूपों का अनुभव, परम धाम की स्थिति का अनुभव, जिससे विकर्म विनाश हो जाए, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव, जिस फरिश्ता स्वरूप को धारण करके संसार की जो आत्माएं हैं उनको हमें सकाश देनी है, हम इस संसार की आत्माओं के पूर्वज है। दुखी है, अशांत है, तड़प रही है, विकारों के गर्त में है, दुर्योधन के जैसी अवस्था है। दुर्योधन कहता है कि क्या मुझे पता है मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, परंतु मेरे में शक्ति नहीं है, हे कृष्ण मैं क्या करूं। वो इतना मूर्ख भी नहीं था कि उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो कहता है कि मुझे पता है मैं जो कुछ कर रहा हूं सब गलत है, परंतु सत्य सही करने की मुझ में शक्ति नहीं है। ऐसी ही स्थिति संसार की आत्माओं की है। तो इन संसार की आत्माओं को सकाश देना हमारा कर्तव्य है, हम जिम्मेवार है। यदि हमारे ही मन में विकर्म है, विकार है, तो हम संसार के विकार को कैसे, संसार को कैसे विकार विकर्म और विकल्प से मुक्त कर सकेंगे। तो अमृत वेला, तीसरा मुरली, क्या करेंगे उसका अध्ययन, स्वाध्याय, मनन, चिंतन, रोज एक टॉपिक निकालना और उसके ऊपर लिखना। रोज एक टॉपिक ले लेना और जो लिख सकते वो लिखे। जैसे आज की मुरली में एक शब्द आया, बाबा ने कहा महात्यागी, त्याग अर्थात क्या, लिखो। दूसरी जगह शब्द आया वरदानी, वरदानी अर्थात क्या, लिखो। महादानी, महादानी अर्थात क्या, 10 पॉइंट्स, लिखो। घृणा, मेरे जीवन में कहां घृणा है, किसके प्रति क्यों है, 10 पॉइंट्स, लिखो। लिखने का अभ्यास, जो नहीं लिख सके वो मन ही मन चिंतन करे। जब तक उसका चिंतन नहीं होगा वो केवल और केवल थियरी है। दो प्रकार के धर्म है, एक है सैद्धांतिक धर्म, थियोरेटिकल रिलीजन, दूसरा है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल रिलीजन। भगवान जिस धर्म की स्थापना कर रहा है वो थियोरेटिकल नहीं है, सैद्धांतिक नहीं है, परंतु व्यवहारिक है, जो व्यवहार में आ सके। तो मुरली की जो बातें हैं, ये मुरली, ये उसकी बातें, ये हमारा मन और विचार, हमारे विचार और मुरली एक हो जाए, दोनों मिल जाए। तो पहली संपूर्ण पवित्रता, दूसरा अमृत वेला, तीसरा मुरली, चौथा भोजन और पांचवा वैराग। इस संसार को देखो, अपने ही जीवन को देखो, जिन जिन लोगों में इतना मोह था क्या मिला उनसे, कहीं ना कहीं तो धोखा प्राप्त हुआ है। और ये विडंबना है कि धोखा खा लेना ये तो ठीक है, पर दूसरी बार वही धोखा। रिसेंटली आईएएस की जो एग्जाम थी, आईएएस की, उसमें एक ऐसे दिया गया था स्टूडेंट्स के लिए, द ओनली लेसन दैट वी हैव लर्नड फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी हैव नॉट लर्नड एनी लेसन। ये टॉपिक था कि इतिहास से हमने अगर कुछ सीखा है तो ये सीखा है कि कुछ भी नहीं सीखा। हमारे जीवन में हमने बहुत सारी भूलें की, एक बार भूल करना माफ, पर वही भूल दोबारा करना, एक व्यक्ति ने धोखा दिया उसी व्यक्ति के द्वारा फिर से धोखा, और हमने स्वयं को तैयार कर रखा है उस धोखा खाने के लिए, यही दुख का कारण है। तो ये पांच धारणाएं हैं। अभी हम 5 मिनट के लिए एक योग का प्रयोग करेंगे, जिसमें माताएं जो है एक दूसरे को फेस करके थोड़ा एक के बाजू एक ऐसे बैठ जाएंगे, एक माता के आगे दूसरी माता, एक भाई के आगे दूसरा भाई, टर्न हो जाएंगे। जो चेयर पे बैठे अगर हो सकते हैं तो वो भी एक एक को एक फेस करना है, एक एक को एक फेस करना है। चेयर थोड़ी सी टर्न कर लीजिए अगर ज्यादा नहीं होती है तो, हर एक एक को देखे बस। योग की कमेंट्री करेंगे, सॉफ्ट म्यूजिक। एकदम अचल स्थिति, शरीर संपूर्ण शांत। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान एक दिव्य ज्योति हूं। तपस्वियों में महातपस्वी, तेजस्वियों में महातेजस्वी, मैं एक तेजोमयी आत्मा हूं। संपूर्ण चेतना को भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करेंगे। मैं अति सूक्ष्म संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें निकलकर संपूर्ण शरीर में जा रही है। मेरी संपूर्ण देह पवित्रता के दिव्य प्रकाश से भर गई है। कितना हल्का, कैसी निर्भार अवस्था है यह। देख रहा हूं मेरी आंखों के सामने एक महान आत्मा बैठी हुई है। कितनी श्रेष्ठ यह आत्मा है। स्वयं भगवान ने इस आत्मा को चुना है। कितनी विशेषताओं से यह आत्मा भरपूर है। मैं आत्मा देख रही हूं इस आत्मा को, भ्रुकुटी पर चमकती हुई यह आत्मा बाबा का विशेष रत्न है। मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें निकल इस आत्मा में जा रही है। और इस आत्मा से भी संपूर्ण पवित्रता की किरणें निकल मुझ में समा रही है। आहा, कितना आनंद है इस आत्मिक दृष्टि में। संपूर्ण वातावरण शुद्ध हो गया है और यहां की संपूर्ण पवित्रता की यह किरणें धीरे धीरे सारे विश्व में फैल रही है। संपूर्ण वसुंधरा शुद्ध हो गई है। मैं आत्मा अब अपने सूक्ष्म शरीर को धारण करके चलती हूं ऊपर आकाश में। बारिश की यह बूंदे, यह निरभ्र आकाश मेरे इस पवित्र वाइब्रेशंस को ग्रहण कर रहा है। एक एक वर्षा की यह बूंद पावन हो रही है। इस धरा का एक एक कण पावन हो रहा है। वायुमंडल में एक अपूर्व पवित्रता का वातावरण निर्माण हो रहा है। पांचों ही तत्व शुद्ध हो रहे हैं। और अब मैं पहुंच जाता हूं सूक्ष्म वतन में, स्वयं अव्यक्त बाप दादा सामने खड़े हैं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और मुझे तिलक दे रहे हैं। बच्चे संपूर्ण पवित्र भव, संपूर्ण धारणा युक्त भव, धधकते हुए वैराग से युक्त भव, महात्यागी भव, वरदानी भव, महादानी भव। देख रहा हूं बाबा की आंखों में अनंत शक्तियों की धाराएं उन नैनों से मुझ आत्मा में समा रही है। बाबा आज से ये जीवन तुम्हारा है, एक तुमसे ही प्यार करूंगा, एक के प्रति समर्पण भाव, बस एक की लगन, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्तियां, एक वही। बाबा के इस दिव्य रूप को अपने अंदर धारण कर मैं फरिश्ता धीरे धीरे नीचे उतरता हूं। संपूर्ण भूमंडल को सकाश देते हुए, विश्व की हर आत्मा को परमात्मा प्रेम का संदेश देते हुए, मैं फरिश्ता पुनः इस पार्थिव शरीर में प्रवेश करता हूं। देख रहा हूं सामने बैठी आत्मा और देख रहा हूं ब्राह्मणों का यह अलौकिक संगठन, यह दिव्य वातावरण, और इसी वातावरण को मैं अपने दिलो दिमाग में अंकित करता हूं। ओम।
शांति।